उपस्थित सुधिजनों देवियों, हम कठोपनिषद की श्रृंखला में थे, बीच में अन्य दूसरे दूसरे कार्यक्रमों में बीच बीच में परिवर्तन होता है। हमने अभी तक सुना था यमराज ने, आचार्य यम ने नचिकेता को तीसरे वर के रूप में उपदेश देना शुरू करते हैं, मृत्यु के बाद क्या है, आत्म तत्व के ज्ञान देने से पहले कुछ भूमिकाएं बनाते हैं। और उन भूमिकाओं में हमने सुना था इंसान की दो तरह की गति है, रास्ता है। एक तो बहुत साधन है, संपत्तियां है, सुविधाएं हैं, जिसमें हम बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं। और एक दूसरा रास्ता है जो हमारे पास कुछ है या नहीं है मायने नहीं रखता, अंदर की आत्मा बढ़ती है। पहली रास्ता से शारीरिक सुख बढ़ता है, दूसरे मार्ग से आत्मिक मार्ग बढ़ता है। तो दो तरह के मार्ग होते हैं, उसको अपनाने वाले दो अलग अलग तरह के लोग होते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो इस जीवन में भी दोनों में संतुलन बनाते हैं। हमने इसकी भी चर्चा की थी, भारत में जो आश्रम व्यवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, संन्यासी, ब्रह्मचर्य आश्रम में उसको अंदर की यात्रा सिखाई जाती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब होता है जिसको आजकल आप स्टूडेंट लाइफ कहते हैं, शुरू के 20, 22 साल, 23 साल तक उसको यह सिखाया जाता था कि अंदर की यात्रा कैसे की जाए। तो जब वो गृहस्थ आश्रम में आकर बाहरी दुनिया की ओर जाता था, भोग की दुनिया में जाता था, तो उसके भोग में और ब्रह्मचारी न बने हुए व्यक्ति के भोग में अंतर होता था। दोनों भोगते हैं, पर एक भोगी होता है और एक साक्षी होता है। भोगी जो कंज्यूमर है और एक विटनेस बनता है। भोगी का लक्षण हमने डिस्कस किया था, भोगी जो भोगने के बाद भी जो मिला उसको कम लगे, जितना भी मिल जाए उसके लिए कम है वो, जो मिल गया वो बेकार है, जो नहीं मिला उसी में ही रस छुपा होता है। मुझे लाखों कर डॉलर चाहिए और बड़े मेहनत करके जिस दिन मैंने लखपति बना, लखों डॉलर मेरे पास हो गए, 15-20 दिन के बाद फिर अब मुझे उसमें सुख नहीं आने लगता, अब मुझे उससे बड़े में सुख ढूंढना पड़ता है। मेरे सुख हमेशा जो मेरे पास नहीं है उसी में ढूंढता हूं, जो मेरे पास है उसमें मैं सुख खो बैठता हूं। भोगी का तीसरा लक्षण होता है कि उसकी इच्छाएं बहुत होती हैं, अनलिमिटेड होती है, अनंत होती है। उसका फिजिकल, उसका शारीरिक, मानसिक क्षमताएं उसको कभी पूरी नहीं कर पाती है और वो जीवन भर असंतोषी रहता है। एक दूसरा व्यक्ति है जो दूसरा पक्ष है, जो भोगता है पर साक्षी भाव से, अजय विटनेस भोगता है, उसका लक्षण है जो मिल जाए संतुष्ट है, ईश्वर की कृपा है समझ लेता है, अनुग्रहित होता है, अपने आप को धन्य धन्य समझता है, ग्रेटफुल समझता है कि ईश्वर की कृपा है कि मुझे इतना मिला, जो मिला ईश्वर की कृपा समझता है और अपने लिए काफी समझता है। जो कुछ घटनाएं उसके आसपास घटती है या जो वो खुद करता है, वो करने के बावजूद भी अपने आप को विटनेस बना के रखता है, अपने आप को उसका मालिक नहीं समझता, उस कार्य की क्रेडिट खुद नहीं लेता, ना मन में ना विचारों में। तीसरी होती है उसकी इच्छाएं कम से कम होती है जितनी जरूरत है, पर ऐसा इसका अर्थ नहीं कि आपकी इच्छाएं कम होंगी तो आपके पास संपत्तियां आना कम हो जाएगा, क्योंकि संपत्ति मेहनत से आती है, इच्छा से नहीं आती है। इच्छा बिना किए भी हमारे पास बहुत कुछ आ सकता है, फर्क इतना होता है एक इच्छा से लाता है जो दुखी बनता है और एक है जिसमें कोई इच्छाओं का इच्छाएं होती नहीं है व कम होती है, पर उसके बावजूद भी वो ड्यूटी समझ के काम करता है, उसके पास संपत्तियां होती है। भोगी आदमी को स्वर्ग में भी छोड़ देंगे, वो आपको दुखी मिलेगा क्योंकि स्वर्ग उसको कम लगेगा, उसके ऊपर उठने की कोशिश करेगा। साक्षी आदमी को नरक में भी डाल दें, वो अपना सुख ढूंढ ही लेगा। दुनिया में जितने लोग दुखी हैं वो इसीलिए दुखी नहीं कि दुनिया ने उनको दुख दिया, इसीलिए कि दुख में रहना उनकी बीमारी आदत पड़ चुका है, उनको तड़प है। इसीलिए देखेंगे करोड़पति भी दुखी, भिखारी भी दुखी, पढ़ा लिखा भी दुखी, अनपढ़ भी दुखी। सुख होना हमारा स्वभाव है, सुखी रहना, दुखी होना हमारा स्वभाव होता है। जिसके पास बहुत कुछ है वो भी आपको दुखी मिलेगा। एक होटल के मालिक मिले, बड़े परेशान थे, ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था। क्या समस्या है, क्यों इतने परेशान हो, बहुत नुकसान हो गया, मौसम आजकल खराब चलता है, सीजन नहीं है तो होटल ठीक से चल नहीं रहा है। कमाल है, होटल तो खचाखच भरा है, ग्राहक बैठे हैं सारे, फिर कहां से कम लग रहा है। आपको पता नहीं पिछले साल के इन्हीं दिनों पर लोग बाहर से वापस चले जाते थे, और आज बाहर एक आदमी भी नहीं है, बस सीटें भरी रहती है। आदमी परेशान है कि मेरा व्यापार में घाटा हो गया। बोले कैसे घाटा हुआ? बोले 10 लाख का मुनाफा होना था, 5 लाख की मुनाफा हुई। हमें यह नहीं दिखा कि 5 लाख का लाभ हुआ, हमें यह नहीं दिखता कि 5 लाख नुकसान हुआ। तो होता क्या है, हम उस नुकसान के दुख में जिंदगी, मेरे पास 5 लाख के होने के बावजूद भी मैं दुखी जिंदगी में रहता हूं, क्योंकि जो नहीं मिला उसमें मैं दुखी हूं। भोगी उसी का नाम है जो भोगते हुए भी दुखी मिलता, साक्षी उसका नाम है जो भोगते हुए भी सुख अनुभव करता है। ये दोनों में अंतर है। हमने यहीं तक चर्चा की थी, आगे की चर्चा, यमराज ने नचिकेता को बहुत सारे किस्म के लालच दिए, डराया, बहुत तरह के परीक्षाएं की, नचिकेता हर परीक्षा में खरा उतरा। वो तीन चीजें जो यमराज ने उसमें देखा, परम वैराग्यवान, वैराग्य कुट कुट के भरा हुआ था, निर्भीकता, कोई डर नहीं थी, अदृढ़ निश्चय था। वैराग्य क्या चीज है? जब मेरी इच्छाएं दुनिया की ओर है, बाहर की ओर है, वो राग है, जिसको आप कहते हैं पाने की चाहत, उसको राग कहते हैं। जब मेरी इच्छाएं अंदर की ओर हो जाए तो बाहर की दुनिया से मेरा इंटरेस्ट कम हो जाता है, मेरी इच्छाएं कम हो जाती है, मुझे मजा आना कम लगता है, तो मैं वैरागी हो जाता हूं। लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है, वैरागी का अर्थ यह नहीं कि दुनिया छोड़ देना, और इस गलतफहमी का इतना बड़ा नुकसान होता है कि दुनिया में ज्यादातर धर्मों में जो तथाकथित वैरागी लोग होते हैं वो आम लोगों से ज्यादा भ्रष्ट दिखने लग जाते हैं, क्योंकि संपत्ति छोड़ने से वैराग्य नहीं होता, संपत्ति के प्रति राग, इच्छाएं छोड़ने से वैराग्य होता है। अगर संपत्ति ना होना योगी का, सन्यासी का, वैराग्य का लक्षण होता तो दुनिया में सारे गरीब लोग सन्यासी कहलाते, योगी कहलाते, अधनी लोग सारे भोगी कहलाते, पर ऐसा नहीं होता। मेरे पास संपत्ति है या नहीं है, असली बात है कि मेरे उसके साथ अटैचमेंट कितना है। मेरे पास अगर एक लोटा है और उस लोटे से भी मेरी अटैचमेंट है तो मैं पूरा का पूरा भोगी हूं। मेरे पास सब कुछ है अगर उसके बावजूद भी मैं उसमें अटैच नहीं हूं तो मैं पूरा का पूरा त्यागी हूं। जनक राजा थे, इतने बड़े राज्य के राजा थे, और जब भी ऋषियों की सभा होती थी तो महर्षि वशिष्ठ ऋषियों में श्रेष्ठ हुआ करते थे, हमेशा उनको उच्च आसन पर बैठाते थे, ऊंचे स्थान पर बैठाते थे, अपने बराबर में बैठाते थे। बाकी ऋषियों को जलेसी होती थी, थोड़ी ईर्ष्या होती थी कि देखिए ये राजा है, इसीलिए वशिष्ठ इसको ऊंचा आसन देते हैं। ऋषियों की सभा में ऋषियों का सम्मान होना चाहिए, न कि नेता का, लीडर का होना चाहिए। वैसे हमारी एक पुरानी आदत है, हम पीछे से हर नेता को गाली देते हैं पर हर सभा में नेता को ऊंची सीट पर ही बैठाते हैं। वो आध्यात्मिक सभा में भी मुख्य अतिथि नेता ही मिलेगा, यूनिवर्सिटी के जो कन्वोकेशन है, ग्रेजुएशन डे, उसमें भी नेता ही मिलेगा। और हर आदमी नेता को गाली देगा, हर सभा में नेता सबसे, साइंटिस्टों के कॉन्फ्रेंस में भी नेता ही चीफ गेस्ट बनेगा, साइंटिस्ट नहीं बनता। तो ऋषियों को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि वशिष्ठ उसी ये मॉडर्न सोसाइटी की बीमारी से ग्रस्त है कि धनियों को गाली दो, चंदा लेते समय बहुत माला प्रशंसा तारीफों के पुल बांधते जाओ। ये जनक को ला करके मंच पर बैठाता है क्योंकि राजा है। वशिष्ठ समझ गए, बोले मेरे प्रति लोगों के अंदर अंदर कुभावनाएं बन रही है। उन्होंने कहा कि ये इसके ऋषियों के सामने इसकी स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद एक दिन ऐसी सभा चल रही थी, लोग साधना में ऋषि लोग बैठे थे, अचानक आश्रमों से दौड़े दौड़े एक व्यक्ति आया, बोला आश्रमों में आग लग चुका है। सारे ऋषि दौड़ने लगे आगे पीछे होकर के अपने कुटिया को बचाने के लिए। आश्रम में क्या था, कोई आजकल के तरह बाबा जी तो थे नहीं कि बड़े बड़े महल जैसा आश्रम में रहते, कुटिया थी, झोपड़ी थी, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कुछ घास फूस लकड़ियां, एक लोटा होगा, दो चार लंगोट होंगे, और कुछ तो है नहीं। ऋषि दौड़े दौड़े गए अपने कुटिया को बचाने के लिए, बात उस दिन खत्म हो गई, आग लगा नहीं था, व्यक्ति ने झूठा झूठ बोल दिया था। अगले महीने इसी तरह सभा चल रही है, साधना की सभा, लोग साधना में बैठे, राजभवन से दौड़े दौड़े आया दूत, जनक के लिए समाचार था कि राजभवन में आग लग चुका है। ऋषि लोग सचेत हो गए, राजभवन में आग लग चुका है, पर जनक अब भी शांत है, कोई मुंह पर कोई लकीर नहीं, कोई रेखाएं नहीं, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल शांत है। जब तक सभा चली उतने देर तक शांत बैठे हैं, कोई तनाव नहीं। वशिष्ठ जाकर ऋषियों को अगले दिन उनके आश्रमों में पूछा कि जब आपके आश्रमों में आग लगने की बात फैली आप क्यों दौड़े थे? बोले कुटिया बचाने के लिए। भी कुटिया में क्या था? घास फूस की कुटिया है, एक आधा लोटा रखी होगी। जनक के महल में जब आग की सूचना हुई जनक तो हिला नहीं। ये मैंने इसीलिए कराया था आपको ये संदेश देने के लिए कि घर परिवार दुनिया संपत्ति छोड़ देने से कोई वैरागी नहीं होता, अपने महल में रहकर भी वैरागी व्यक्ति हो सकता है, ऋषि हो सकता है, अगर उसके मन में राग हट जाए, उसके मन में पाने की चाहत, वो आसक्ति, वो अटैचमेंट हट जाए, वो वैरागी हो सकता है। जनक तुम में से ज्यादा वैरागी है, इसलिए उसको विदेह कहा जाता था। देह कहते शरीर, विमल ना होना, शरीर के होते हुए भी उसके लिए शरीर कोई मायने नहीं रखता, उस शरीर को ध्यान नहीं देता था। नचिकेता वैरागी था जिसकी बाहरी दुनिया से मन हट चुका था, तभी यमराज के सैकड़ों लालचों के बावजूद नचिकेता हिलने के लिए तैयार नहीं था। नचिकेता दृढ़ निश्चय था, ज्ञान पाने के लिए एक दूसरा शर्त होता है दृढ़ निश्चय होना, जानने की तड़प होना कि हिलना नहीं, दृढ़ निश्चय होना। दृढ़ निश्चय कब होता है? जब आपके अंदर संदेह नहीं होता है, कोई डाउट्स नहीं होता है, क्वेश्चंस नहीं होते, तभी आप किसी काम के लिए उतने निश्चितता के साथ करते हैं। दुनिया में जितने आस्तिक और नास्तिक लोग होते हैं, नास्तिक तो कम होते हैं, सिर्फ 2-3% आस्तिक होते हैं। आस्तिक का मतलब होता है जिनको ईश्वर पर, धर्म पर कोई आस्था नहीं होती है, और 98% लोग जो होते हैं वो आस्तिक होते हैं, जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं। पर समस्या क्या है? नास्तिकों से आस्तिक ज्यादा खतरनाक कभी कभी लगते हैं, वो इसीलिए कि नास्तिक का कंफर्म है कि वो उसको ईश्वर पर धर्म पर कोई भरोसा नहीं है। आस्तिक की प्रॉब्लम है कि ज्यादातर आस्तिक अंदर से डाउट में रहते हैं, संदेह में रहते हैं। इसीलिए हम धर्म बदलते हैं, मंदिर बदलते हैं, पूजा पाठ बदलते हैं और बहुत कुछ बदलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर सचमुच हम और आप ये दुनिया आस्तिक होता तो दुनिया में कहीं अधर्म नहीं होता, क्योंकि 98% लोग जिस चीज को मानते हैं 2% लोग उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। पर देखा जाता है आस्तिकता बढ़ती जाती है, पर दुनिया में सारी इंसानी जो जो गलत काम है वो भी बढ़ता जाता है। हमेशा ध्यान रखें, आस्तिकों को ज्यादा डर लगता है नास्तिकों से। ये आस्तिक मतलब सो कॉल्ड आस्तिक। दुनिया में जितने संप्रदाय हैं जिनको आप पंथ कहते हैं, रिलीजियस सेक्ट्स होते हैं, उनमें एक चीज जरूर होता है, दूसरों के वहां मत जाना, दूसरी किताबें नहीं पढ़ना। क्यों? बिगड़ने का चांस ज्यादा है, हमारे ऊपर डाउट है। हम जो बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, हमें खुद ही डाउट है कि इतना कमजोर है कि तूफान आना तो छोड़िए, हवा के झोंके में कहीं ना वो बदलना चाहे। नास्तिक को डर नहीं होता है, वो हर जगह जाएगा, सबसे बहस करके आ जाएगा। आस्तिक को डर होता है, वो छुपा रहता है, उधर नहीं जाना, वो बिगाड़ देगा, उधर नहीं जाना। इतनी कमजोर हम रहते हैं, हमारी आस्तिकता इतनी कमजोर होती है, छोटी सी हवा के झोंके में भी हम बदल जाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं मंदिरों में जाते हैं, हम सुनते हैं वो मंदिर जाना छोड़ दिया। क्यों? वो किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया, किसी व्यक्ति ने वहां झूठा फेंक दिया, मुझे वहां बुरा लगा, तो उस मंदिर के प्रति मेरी आस्था टूट गई। मंदिर के साथ व्यक्ति का क्या रिलेशन है, मैनेजमेंट का क्या रिलेशन है? तू मंदिर जाता था अपने ईश्वर से, अपने आप को जोड़ने के लिए। पर इसका मतलब है कि मंदिर में तुम आस्था जोड़ने नहीं जाता था, अपने आप को ईश्वर से जोड़ने नहीं जाता था, व्यक्तियों किसी से जोड़ने जाता था। तेरी आस्था टूट गई, किसी दूसरे ने कुछ गड़बड़ किया, दूसरे ने गड़बड़ किया, तुम्हारी आस्था क्यों टूटी? क्योंकि तुम पहले से ही टूटी हुई आस्थाओं से जाता था। इसीलिए हमारी प्रॉब्लम है कि हम हर मंदिर मस्जिद चर्चों में भागने के बावजूद ईश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा नमूना होता है जब हम मिरेकल पर भरोसा करते हैं, ईश्वर पर कम करते हैं, ईश्वर की सृष्टि पर कम करते हैं। इसलिए आजकल आप देखेंगे लोग ईश्वर से ज्यादा बाबाओं के भक्त मिलते हैं। अब ईश्वर के भक्त आपको कम मिलेंगे, बाबाओं के, प्रीचरों के भक्त ज्यादा आपको मिलेंगे। दुनिया के हर रिलीजन, ऐसा नहीं कि हिंदुओं में, वो चर्चों में भी देखिए जाकर, आप चर्च से ज्यादा वो जो टीवी में प्रीच करते हैं उनके चेले ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो मिरेकल देते हैं, दिखाते हैं। हमारे यहां भी यही चीज है, कोई बाबा कहेगा क्या समस्या है जी, मेरे तरक्की नहीं हो रही है, समोसा खाया था जी, नहीं कल से समोसा खाओ तरक्की हो जाएगी। जी तनख्वाह नहीं बढ़ रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा है, अच्छा कब से नहीं हो रहा है, 4 साल से नहीं हो रहा, 4 साल में कितने बार छोले भटूरे खाया था जी, 1 बार खाया था, थोड़ा हफ्ते में 3 बार खाया करो, प्रमोशन हो जाएगा। और हम मान जाते हैं और उसके बदले लाखों चढ़ावा दे देते हैं। क्या चीज है जी, बीमारी ठीक नहीं हो रही, घर में कौन सी देवता पूछते हो, दुर्गा हटा दो, उसकी जगह मेरा फोटो लगा दो, 4 दिन में बीमारी ठीक हो जाएगी। और करोड़ों लोग भीड़ हो जाते हैं। हमारी भक्ति ईश्वर पर कम होती है, अपनी समस्याओं को समाधान ढूंढने वाले लोगों पर ज्यादा होती है। नचिकेता कंफर्म्ड था, उसको ये बिल्कुल डाउट नहीं था मैं कोई गलत सौदा कर रहा हूं, आगे जाकर पछताने वाला हूं। वो निर्भीक था, वो बिल्कुल निश्चयी था। और जब कोई व्यक्ति निश्चयी होता है तो निडरता, डर अपने आप हट जाता है। जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं, कोई नए जगह पर जाते हैं, नया काम शुरू करते हैं, तो तब भी आपको थोड़ी बहुत हमें घबराहट तो रहता है, पता नहीं आगे जाकर क्या होगा। पर जब आप दृढ़ निश्चयी बनते तो आपका डर हटता है। डर के साथ, डाउट के साथ आप कोई नया काम शुरू करते तो आप कभी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि हमेशा आप अधकचरा काम करते हैं। नचिकेता बिल्कुल परफेक्शन के साथ गया था, वो तीन चीजों की परख हो गई उसकी। ये नीडर था, निश्चयी था और वैराग्यवान था। यमराज अब उसको उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? अन्य श्रेयो अन्य दुते प्रेय ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीत तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात यो प्रेयो वृणीते। इसका अर्थ है, दुनिया में दो तरह की रास्ता है, एक श्रेय और एक प्रेय। दोनों इंसान को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो श्रेय को पकड़ता है, जो श्रेय को चुनता है, उसके जीवन में हर तरह की उन्नति होती है। जो प्रेय को चुनता है, उसको शुरुआती लाभ जरूर होता है, बाद में उसको नुकसान उठाना पड़ता है। दो तीन चीजें इस पर समझेंगे, श्रेय और प्रेय। क्या श्रेय का मतलब होता है? श्रेष्ठ, जिसको आप बोलते हैं नोबल, अच्छा। और प्रेय का मतलब होता है प्लेजर, जो खुशी दे, अच्छा लगे, मजा आए। जैसे आप डोनट्स खाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, तो आपको मजा आता है। जो करेला खाते हैं, नीम के पत्ते खाते हैं, बेकार लगता है, बच्चे तो छूते ही नहीं है, बड़े भी नहीं छूते। अब तो वो करेले की सब्जी खा रहे हैं, उसमें भी वो खटास मिठास डाल डाल के, क्योंकि प्रेय नहीं है ना, प्लेजर नहीं है, उसमें टेस्ट नहीं होता है। तो दुनिया में यही दो तरह की रास्ता है। एक तो बहुत सारे चॉकलेट है, टॉफी है, आइसक्रीम है, और एक तरफ करेले और नीम की सब्जियां हैं। दो रास्ते होते हैं। करेले नीम अगर रोज खाएंगे, मैं कल परसों देख रहा था नेट में कि जो रोज खाता है या लगातार खाता है, उसको साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं, और जिंदगी भर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। पर खाना मुश्किल होता है, रोज खाना तो बहुत ही मुश्किल है। और मिठाइयां खाने के लिए नेट चेक करने की जरूरत नहीं, वो तो हम खुद अनुभव करते कि अब रेगुलर मिठाई खाते हैं तो 40 साल तक भी पार करना मुश्किल है, कोई ना कोई लक्षण तो आ ही जाता है। तो शुगर ही अपने आप इतना दिखाते, आप बीमारी का नाम ही शुगर हो गया। पर मीठा लगता है वो, हमेशा जो समझदार लोग कहते हैं टेस्ट जो है वो तीन चीजों में मिलता है। तो फैट में आप कितना ज्यादा घी, ये चीज, बटर यूज करते हैं, और मीठा और नमक, ये प्रेय है। आपको हर डॉक्टर कहता है इनसे बचो, हर दुकानदार कहता है इन्हीं को खाओ। और समझदार ज्यादातर लोग, हम समझदारी तो रखते हैं पर कभी कभी समझ पर शायद कंप्रोमाइज करते हैं, तो हम खाते हैं। जो ज्यादा खाता है वो बीमार होता है, डॉक्टर फिर डांटता है, कम करो। जीवन इसी तरह का है। कुछ काम, कुछ आचरण ऐसे होते हैं जो मुश्किल होता है, जो लगता है कि इसमें चलना मुश्किल है, पर इससे जीवन में, इस जीवन में भी अगले जीवन में भी हमें बहुत बड़ा सुख मिलता है, बड़े क्वांटिटी का सुख मिलता है, पर वो आखिर में मिलता है। एक दूसरे तरह के व्यवहार है जिसमें हमें शॉर्टकमिंग, तत्काल ही सुख मिलने लग जाते हैं, अचानक सुख मिलने लग जाता है, जब खाया जब किया तब आनंद आने लग जाता है, बाद में नुकसान करते हैं। श्रेय मतलब जो श्रेष्ठ है, जो सच है, जो शुभ है, पर अच्छा कम लगे। प्रिय मतलब जो प्यारा लगे, जो मन को भाए, प्रेय जो शरीर को खुश रखे, श्रेय जो आत्मा को खुश रखे। प्रेय का अर्थ है जो दिखता है कि इससे, मतलब प्रेय का मतलब है वो चीजें जिनसे सुख मिलना दिखता है। सुख मिलता है नहीं मिलता है इसमें क्वेश्चन मार्क होता है, पर जिसमें लगता है कि उसमें सुख मिलता है, श्रेय वो है जो दिखे ना दिखे पर अच्छा होता है। मां बाप का डांट दिखे ना दिखे अच्छा ही होता है, दोस्तों की तारीफें, क्या रखा है, मां बाप आजकल वैसे ही होते हैं, चल आज रात को नाइट क्लब अगर आते हैं दिखा कर लाते हैं मजा आ जाएगा, बच्चे को लगता है ये मेरा दोस्त ज्यादा अच्छा है, ये मेरे मां बाप ज्यादा खड़ोश है, मेरे पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, ये मत करो वो मत करो, जान के दुश्मन बने हुए, ये दोस्त ज्यादा अच्छा है, पी ले देखना पूरा स्वर्ग दिखेगा, ये मां बाप तो ऐसे ही बुढ़े हैं बोलते रहते हैं उनका काम है, फिर दोस्त फिर अच्छा लगता है, क्लास आज मत जाओ क्लास क्या करना, तो दोस्त ज्यादा अच्छा लगता है, प्रिय है, क्योंकि मन को भाता है। मां बाप की टोका टोकी डांटना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर जीवन को सुधारता बनाता है ये मां बाप और अध्यापकों की टीचरों की जो टोकना डांटना ये जीवन को बनाता है, पर हर किसी को ये बुरा लगता है। सिर्फ मां बाप क्यों, कोई भी हमें टोकता है डांटता है उससे सिर्फ हमें फायदा ही होता है, पर हमेशा हमें यह बुरा लगता है। बूढ़ों को भी जवानों को भी हर किसी को बुरा लगता है कोई उसको टोके। अब ध्यान रखिए, डांटना और टोकना हमेशा अपने लिए फायदा होता है, पर हमेशा हमें बुरा लगता है। तारीफ करना ज्यादातर नुकसान करता है और हमेशा अच्छा लगता है। तारीफ से अहंकार बढ़ता है, ईगो बढ़ता है, काम का रफ्तार कम होता है, नया इनोवेशन नई नई आइडियाएं कम हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है इसी में इतनी तारीफ मिल रही तो आगे करने की क्या जरूरत है। टोकने पर डांटने पर बुराइयां निकालने पर आदमी में और सुधार करने की गुंजाइश रहती है, पर हमेशा टोकना निंदा करना बुरा लगता है। प्रेय आरंभ में सुख देता है बाद में दुख देता है, श्रेय शुरू शुरू में दुख देता है आखिर तक इंतजार करें तो आपको सुख मिलेगा। जीवन के जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं हमें वो सब बुरा लगता है, और जितनी आजादियां हैं स्वच्छंदता है मनमानी करना वो सब अच्छा लगता है। हमेशा ध्यान रखिए, जिस भी समाज ने जिस परिवार ने मनमानी करने की आजादी दे रखी है वो समाज वो परिवार वो व्यक्ति हमेशा बाद में रोते हैं बाद में पछताते हैं। जिस समाज में जिस परिवार में जिस व्यक्ति ने एक रेगुलेशन बना रखा है एक कंट्रोल रखा है एक लिमिटेशन रखा है कहां तक आपकी आजादी है, वो समाज ज्यादा स्वस्थ होता है ज्यादा हेल्दी होता है, वो व्यक्ति ज्यादा हेल्दी होता है, वो परिवार ज्यादा सुखी होता है। रेगुलेशंस श्रेय होते हैं और पूरी तरह आजादी प्रेय होता है, हर संबंध में यह रोल लागू होता है। इसलिए प्राचीन काल में आप देखेंगे जो गुरुकुल व्यवस्था थी उसमें बच्चों को शुरू के जो 15-20 साल है, शुरू में भी हमने चर्चा की है, उसमें उनको वो सारी कठिनाई जो मुश्किलें हैं उनको सिखा दिया जाता था। चप्पल नहीं पहन सकते हो आप, स्वादिष्ट खाना खा नहीं सकते हो आप, शरीर में कोई कोई खुशबू वाली चीज लगा नहीं सकते हो, अपने आप को अब अट्रैक्टिव बना नहीं सकते हो, आपको नमक मसाले तेल वाला खाना बिल्कुल मना है। पर जैसे ही आप गुरुकुल से बाहर गृहस्थ में आते हैं आपको सब छूट हो जाता है, क्योंकि जब एक बार ट्रेंड हो जाते हैं फिर आपका रेगुलेशन अपने आप को आपको फॉलो करता है। तो श्रेय और प्रेय दो अलग अलग रास्ते हैं, जो श्रेय को चुनता है वो जीवन में सुखी होता है शुरुआत में उसको दुख लगे, जो प्रेय को चुनते हैं वो शुरुआत में सुख भोगता है बाद में दुख भोगता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में यम, जब आप योग दर्शन पढ़ते हैं शुरुआत में आपको यम नियम आता है, सब छोड़ो, त्यागो, कंट्रोल करो। इसलिए भारतीय संस्कृति को तपस्या की, इंद्रिय नियंत्रण की, मन नियंत्रण की संस्कृति मानी जाती थी। अगला मंत्र है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तौ संपरित्य विविलक्ति धीरः, श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो ब्रणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् ब्रणीते। श्रेय और प्रेय इंसान के पास पहुंचे, बहुत सारे इंसानों के पास पहुंचे, जो समझदार इंसान है उसने श्रेय को चुना, जो आम इंसान है जिसकी बुद्धि कम है उसने प्रेय को चुना। इसको ऐसे समझे कि एक व्यक्ति को दो लड़के चले शादी करने, लड़की ढूंढने गए या दो लड़कियां लड़के ढूंढने गए, लड़कों की बात लेते हैं, दो लड़के चले लड़की ढूंढने, उनके पास वो देखने गए कैसी कैसी लड़कियां उनको पसंद है शादी के लिए। दो लड़कियां उनको मिली, एक बिल्कुल खुले दिमाग वाला और हर तरह के वेस्टर्न कल्चर से जानकार रखने वाला, यूज करने वाला, एक बिल्कुल सीधी शादी, ज्यादा कोई बाहरी ग्लैमर में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने लिखने लाइफ को समझने में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है, हर हफ्ते बालों का डिजाइन चेंज नहीं करती है, हर हफ्ते आईब्रो का स्टाइल चेंज नहीं करती है, हर हफ्ते कपड़ों की डिजाइन नहीं बदलती है, पर पढ़ी लिखी है, ज्यादा मैच्योर्ड है। दोनों ने चुना, एक ने सीधी शादी को चुना जिसमें कोई अट्रैक्शन नहीं, बाहरी अट्रैक्शन, जिसके बाल वैसे ही हैं, पता नहीं रोज एक ही तरह की कंघी करती है, कोई डिजाइन नहीं बदलती है, कुछ नहीं, कपड़े भी एक ही टाइप के पहनकर आती है। दूसरे ने दूसरे को चुना जो हर रोज नए रूप में दिखती है। साल भर, दो साल के बाद मिले दो दोस्त एक जगह, दोनों ने एक दूसरे को पूछा तुम कैसे हो। मैच्योर लड़की को चुनने वाले ने पूछा ग्लैमर लड़की से, लड़की के पति से, बोले तुम्हारे बाल क्यों उड़ गए ऊपर से दो साल में। बोले क्या करूं, मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। कितने घर में समझौता करना पड़ रहा है। दूसरे वाले ने पूछा तुम क्यों इतने बिल्कुल हट्टे कट्टे, बिल्कुल स्मार्ट दिख रहे हो, क्या बात है, तुम्हारे घर में कोई टेंशन नहीं। बोले टेंशन नहीं, बड़ी अच्छी है। शुरू शुरू में लगा कि इसमें तो कोई अट्रैक्शन नहीं, बाद में पता चला सारा अट्रैक्शन है, क्योंकि जब आप अंदर की ओर झांकना शुरू कर देते तो बाहरी आकर्षण तो 6 महीने में खत्म हो जाता है, फिर रियल लाइफ में जब आते हैं तो फिर जिंदगी फिर मुश्किल होने लगता है। 3 साल में तलाक हो गया, ग्लैमर लाइफ में, मैच्योर लाइफ में जिंदगी भर क्या 7 जन्म के लिए कसम खा जाते हैं। जब भी ग्लैमर को हम चुनते हैं तो तलाक होना पक्का होता है, जरूरी नहीं मियां बीबी में, ग्लैमर लाइफ को जब भी आप चुनेंगे या तो लाइफ को तलाक देना पड़ता है कभी कभी, जरूरी नहीं हमेशा वाइफ को, कभी कभी लाइफ को भी तलाक देना पड़ता है। जब भी ग्लैमरियस लाइफ होता है, उन लोगों के लाइफ देखिए कैसा होता है, कितने दिन जीते हैं और कितनी बीमारियों के साथ, कितने, कम से कम फिजिकल तो छोड़िए, कितने मेंटल बीमारी के साथ, साइकोलॉजिकल, जितने तरह के डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन आपको ग्लैमर लाइफ में मिलेगा। जितना डाउन टू अर्थ रहते हैं उतना अंदर आपको शांति रहती है, खुश रहती है। तो श्रेय और प्रेय, दो लड़कियां गए चुनाने के लिए कि हमें कोई चुने, जो समझदार आदमी उसने श्रेय को चुना, जो थोड़ा कम बाहरी दुनिया के आकर्षण में फंसने वाला उसने प्रेय को चुना। प्रेय को क्यों चुना, ऋषि बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, योग क्षेमात। ये योग क्षेम क्या है, योग का अर्थ होता है जो नहीं है उसको पाना, एक्वायरिंग, इकट्ठा करना। क्षेम मतलब प्रिजर्वेशन, जो है उसको बचा के रखना। एक्चुअली हमारी पूरी जो जिंदगी है वो दो चीज के लिए, हम अपने जिंदगी में जो जितना भी मेहनत करते हैं या तो कुछ पाने के लिए या जो मिला उसको कैसे हम प्रिजर्व करें। जैसे ये शरीर मिला तो शरीर को प्रिजर्व, हम क्यों खाना खाते हैं, क्यों एक्सरसाइज करते हैं, क्यों ये सब करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर और मन को जो मिला उसको हम ज्यादा देर तक बनाए रखें। क्यों हम बाहर जाकर नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास नहीं है वो हम इकट्ठा करें, हम अपना घर बनाए, हम अपना अच्छे कपड़े पहने, हमारे घर में ये सामान हो वो सामान हो, हम इकट्ठा करना चाहते हैं। तो आम आदमी दो चीज के लिए काम करता है, जो नहीं है उसको पाना है, जो है उसको बचा के रखना है, संभाल के रखना है, दो चीज के लिए काम करता है। ये आम आदमी का लक्षण है। तो आम आदमी जो होता है वो अपने इस योग और क्षेम के लिए प्रेय को चुनता है, पर जो ज्यादा ऊपर उठने वाला व्यक्ति है वो श्रेय को चुनता है, ऊपर उठने वाला। इसीलिए आप देखेंगे क्यों दुनिया में वैरागियों का, योगियों का, सन्यासियों का ज्यादा सम्मान होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये हमसे ज्यादा ऊंचा है। ऊंचा किस लिए है? क्योंकि जो हम नहीं कर पाते हैं वो करता है। क्या हम नहीं कर पाते हैं? हम दुनिया में कमाना, इकट्ठा करना और उसको बचा के रखने में ही जिंदगी बिता देते हैं। इन लोगों का इनमें इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए हम दुनिया में हमेशा सन्यासियों को, योगियों को, वैरागियों को, जो समाज के कार्य में लगे, खुद के काम छोड़कर दूसरों के काम में लगे, ऐसे लोगों को हम ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं अंदर से, ये फीलिंग होती है कि मेरे से ये बेहतर है। तो श्रेय और प्रेय आगे देखेंगे। सत्वं प्रियान् प्रिय रूपांश्च कामा न विद्याय नचिकेतोऽत्यस्राक्षी नैतां श्रृंकां वित्तमयीमवाप्तो यस्यामज्जन्ते बहवो मनुष्या। इसका सार है, हे यमराज नचिकेता को कहते हैं, हे नचिकेता तुम वो दूसरे कोटि में आते हो जिसने श्रेय को चुना। तुम्हारे सामने मैंने कितने तरह के लालच रखा, कितने डर रखा, तुमने सबको ठोकर मार दिया, तुमने वो चुना जो दुनिया के आमतौर पर लोग चुनते हैं, तुमने उन चीजों को ठोकर मारा। वो क्या चीज? बोलते हैं सोने की जंजीर में बंधे रहने की जो संकल्प को तुमने छोड़ दिया, जिसको आम आदमी लपक लेता है। कठोपनिषद की भाषा में सांसारिक सुख और भोग सोने की जंजीर होती है। जंजीर का क्या काम है? बांधना। जब मैं एक चीज, मान लीजिए मैंने घर खरीदा, मेरे पास घर नहीं था, मैंने घर खरीदा, जब तक ये घर मेरा नहीं था, मैं हो सकता है उस घर में किराए पर रहता था, मुझे उसकी ज्यादा चिंता नहीं थी, पर मैं रहता उस घर में था। वो हो सकता है किसी रिश्तेदार ने मुझे रहने के लिए दे दिया, किसी कंपनी ने दे दिया, या मैंने किराए पर लिया। जिस दिन उस घर को मैंने अपने नाम पर कर दिया, घर वही है, मैं वही हूं, पर बहुत कुछ बदल गया। अब उस घर के दीवार पर खरोंच होता है तो दर्द होता है मुझे। कल अगर तूफान में आधा उड़ गया था तो भी मुझे टेंशन नहीं था, आज उस दीवार में खरोंच होता है तो मुझे तनाव होने लगता है, क्योंकि अब अटैचमेंट आने लग गया, अब आसक्ति आने लग गई है। ये जो आसक्ति है, ये जो अटैचमेंट है, इससे मैं घर से बंध गया। जंजीर का काम क्या है? बांधना, एक जगह आपको बनाए रखना। अब मैं घर छोड़कर कम जाता हूं, मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं, मेरा अटैचमेंट उस घर से बना रहता है। इसी तरह जिन जिन चीजों को मैंने कमाया, इकट्ठा किया, बचा के रखा, जिनके साथ मेरे अटैचमेंट हुआ, अब मैं उनको छोड़ के नहीं जा पाता हूं। जैसे लोगों के घर में पेट्स होते हैं, जो कुत्ते या जो बिल्लियां पालते हैं, उनके लिए एक समस्या है कि वो कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, कहां घूम के जाए, इनको छोड़कर कहां जाए, क्योंकि जो रास्ते में कुत्ते घूमते वो भी तो कुत्ते हैं, उनके प्रति आकर्षण नहीं रहा, क्योंकि उनके साथ मेरा कोई अटैचमेंट नहीं, वो स्ट्रिक्ट डॉग, उनको तो भूखा मर जाए तो भी मैं नहीं खाना खिलाने वाला हूं। पर इसी कुत्ते के साथ क्यों अटैचमेंट हो गया? क्योंकि इसके साथ मेरा अटैचमेंट हो चुका है, इसके साथ मेरी आसक्ति हो चुकी है, अब मैं बंध चुका हूं, छोड़ के कहीं नहीं जा सकता हूं। इसी को कठोपनिषद की भाषा में कहा सोने की जंजीर। जंजीर तो है जो हमें बांधता है, पर सोना क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव है, आकर्षण करता है, खींचता है, इससे छूटने को मन नहीं करता है, मन करता है और कोई बांध के रखे, जितना बांधे उतना अच्छा है, इसीलिए इसको सोने की जंजीर कहा। यमराज ने कहा है नचिकेता, तुमने उस सोने की जंजीर को ठुकरा दिया जिसको आमतौर पर लोग खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। आपको कोई कहे मैं जंजीर दूंगा लोहे के, आप फेंक देंगे, मैं आपको हीरे का जंजीर में बांधूंगा तो बांधो, कोई बात नहीं, 6 साल बंधा रहूंगा, मेरा तो होगा। उस अटैचमेंट में भी खुशी मिलती है, ये मेरा है, हाथ पैर बंधा है पर हीरे का है, ये मेरा है, इसमें खुशी मिलती है। इसीलिए हे नचिकेता, तुम उस दूसरे कैटेगरी में आते हो जो आम लोगों से थोड़ा ऊपर उड़ते हैं। समय हो चुका है, आगे की चर्चा फिर हम आगे करेंगे। ओम शांति।